बारिश। इस रंग रंग दुनिया को रौनक बख्शने के लिए कुदरत ने हयात व ममात का एक मुकम्मल निज़ाम बनाया है। ज़मीन पर जो भी चीज़ मौजूद है वो हैवानात हों, जमादात हों, निबातात हों। हैवानात में परिंदे हों, चरिंदे हों, दरिंदे हों या इंसान हों, और ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर हशरातुल अर्ज़ हों। ज़मीन पर तीन हिस्से पानी की हुक्मरानी है। पानी की मखलूक में घूंगे हों, सीप हों, मोती हों, मरजान हों, दरियाई घोड़ा हो और बेशुमार पानी से जन्म लेने वाली मखलूकात हों। निबातात में दरख्त हों, पौधे हों, फल हों, खाने पीने के लिए घास हो, तरकारियां और सब्जियां हों। जमादात में मादनियात हों, मादनियात में हीरे जवाहरात हों, जीनत और ज़ेबाइश के लिए तरह तरह के खूबसूरत और कीमती पत्थर हों। तांबा हो, पीतल हो, एलुमिनियम हो, गैस हो, पेट्रोल हो, चांदी हो या सोना हो, सब की तख्लीक का कानून एक है, और वो ये है कि हर चीज़ पैदा होती है, जवान होती है और कौन साली में मुंतकिल होकर इस दुनिया से गायब हो जाती है। पैदाइश का निज़ाम हो, इस निज़ाम में जवानी, बुढ़ापा या मौत हो, सब एक मौयन कानून के तहत हरकत करते हैं और ये हरकत इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में भी जारी रहती है। कुदरत का निज़ाम जिस तरह पैदा करने का पाबंद है, इसी तरह हर चीज़ की हिफाजत भी इस निज़ाम की जिम्मेदारी है। ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने एक छत बनाई है और इस छत को सितारों से, चांद से, सूरज से ऐसा मुज़य्यन किया है कि इंसान देखकर खुश भी होता है और हैरान भी होता है। हुस्न का मयार ये है कि कोई खूबसूरत होता है और कोई कम खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है। ये खूबसूरती, कम खूबसूरती और बदसूरती ज़मीन पर मौजूद हर नौ के अफराद में मौजूद है। जिस तरह इंसानों में लोग खूबसूरत होते हैं, कम खूबसूरत होते हैं, मज़बूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसी तरह निबातात में भी मज़बूत दरख्त, नाजुक दरख्त, बदसूरत दरख्त हर वक्त आँखों के सामने हैं। ज़मीन के ऊपर अगर निबातात की दुनिया न बसी हुई होती तो ज़मीन उजाड़ लगती, ज़मीन के अंदर कशिश बाकी न रहती। निबातात की दुनिया न होती तो इंसान को खाने के लिए अजनास मयसर न आती। दरख्त न होते तो कोयला न बनता, कोयला न होता तो खुर्दनोश में इंसान और शेर बराबर हो जाते। कोयला या लकड़ी या गैस खाना पकाने में काम आते हैं और साथ ही साथ आग से इंसान की इजादात का बराहे रास्त ताल्लुक है। ये आग ही है जो लोहे को पिघलाकर इंसानी ज़िंदगी के लिए आराम व आसाइश मयसर करती है। यही कोयला जो इंसान को ज़िंदगी फराहम करता है, अगर किसी कमरे में जलाकर खिड़कियां और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो आदमी का दम घुट जाएगा। कोयले को खूबसूरती का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस बदसूरत शय के अंदर कुदरत ने जो सलाहियत महफूज कर दी है, इससे मुर्दा अकवाम जिंदा हो गई हैं, और जिंदा अकवाम जिन्होंने कोयले की सलाहियत का सुराग नहीं लगाया और कोयले की सलाहियत से इज्तिमाई फवायद हासिल नहीं किए, वो मुर्दा हो गईं। इंसान मर जाता है, कब्र में दफन कर दिया जाता है। जब कब्र में इंसान का गोश्त पोस्त और हड्डियां मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं तो यही मिट्टी बन जाती है और यही मिट्टी फूल बन जाती है और यही मिट्टी फलों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने एक किस्सा सुनाया था। नाना ताजुद्दीन नागपुरी की खिदमत में खाने के लिए एक अमरूद पेश किया गया। काश जब होंठों से लगी तो इन्होंने फरमाया, ये किसी मुर्दे का गोश्त है। ये कहकर इन्होंने अमरूद की काश फेंक दी। हाजरीन मजलिस में से कुछ लोगों को तजस्सुस हुआ कि अमरूद की काश से मुर्दा गोश्त का क्या ताल्लुक है। वो मुअज्जिज़ हजरात मजलिस में से उठे और फ्रूट की इस दुकान पर पहुंचे जहां से अमरूद खरीदे गए थे। दुकानदार ने सब्जी मंडी में आढ़ती का पता बताया। आड़ती ने इस जमींदार का पता बताया जहां से अमरूद इसके पास आए थे। जमींदार ने बताया कि जिस बाग के ये अमरूद हैं, यहां एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में हल चलाकर अमरूद का बाग लगाया गया था। कतार दर कतार दरख्तों पर और छतरी की तरह सायादार दरख्तों और पौधों पर साइंस ने रिसर्च की है, और ये रिसर्च अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़रई यूनिवर्सिटियाँ कायम हो गईं। पौधे की दो इकसाम हैं, एक वो जो बीज में से दो पत्ते बनकर नमोदार होते हैं, दूसरी किस्म ये है कि इसमें से एक पत्ता निकलता है। जब पौधा जड़ पकड़ लेता है तो ये पत्ते सूख जाते हैं। निबातात में भी खुलिये होते हैं। हर खुलिये की बैरूनी दीवार ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से तैयार होती है। इस बात का मुशाहिदा किया जा सकता है कि जड़ के आखिरी किनारे और पूरी जड़ पर एक गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। जड़ की नोक में इतनी ताकत होती है कि वो सख्त पहाड़ों को भी चीर कर निकल जाती है। हर शय की बुनियाद पानी है। पानी के ऊपर हर तख्लीक का पूरा निज़ाम चल रहा है। पानी न हो तो ज़मीन बे आब व ग्याह बंजर बन जाएगी। पौधों, दरख्तों और निबातात की दूसरी चीज़ों की नशोनुमा के लिए नमी, हवा और गर्मी का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन न हो तब भी नशोनुमा नहीं होगी, और ये सब चीज़ें कुदरत ने पानी में जमा कर दी हैं। जब पानी ज़मीन में दौड़ता है तो जड़ें पानी चूस कर अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। दरख्तों के साथ अगर पत्ते न हों तो इन्हें दरख्त नहीं कहा जाता। दरख्तों की ज़ेबाइश ही पत्तों के साथ है, लेकिन ये पत्ते सिर्फ ज़ेबाइश का ही काम नहीं करते, इनके ऊपर दरख्त की ज़िंदगी का इन्हिसार भी है। हर पत्ते में रगें होती हैं, मसामात होते हैं। ये मसामात कार्बन को पत्तों की रगों में दौड़ाते हैं, और यही मसामात ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पत्तों की भी एक पूरी दुनिया है। पत्ते दरख्त को ज़िंदा भी रखते हैं, और यही पत्ते अगर बीमार हो जाएं तो दरख्त भी बीमार होकर ख़त्म हो जाता है। यही पत्ते जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन के ऊपर निबातात के लिए खाद का काम देते हैं। इंसान के पास कोई ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी ज़मीन पर खाद डाल सके, और बारिश बरसती है, बिजली कड़कती है। बिजली की कड़क से और बारिश की बूंदों से खेतों को बेशबहा नाइट्रोजन मुहैया होती है। दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। हर चीज़ दूसरी चीज़ के लिए ईसार कर रही है। हर चीज़ दूसरी चीज़ की खिदमत में मसरूफ़ है। फूलों में रंगो बू भंवरे और मक्खियों को अपनी तरफ खींच रही है। इंजीर के बारे में बताया जाता है कि इंजीर के दरख्त में फूल नहीं लगता। इंजीर के अंदर एक ज़ोजैन छोटा सा गुंचा होता है। एक ख़ास किस्म की भेड़ नर और मादा गुंचों में अंडे दे जाती है। जब बच्चे निकलते हैं तो नर इंजीर मादा इंजीर में चले जाते हैं। बाज़ बेलें बराए रास ज़मीन से ग़िज़ा हासिल नहीं करती, बल्कि दूसरे दरख्तों के रस पर पलती हैं, और ये दरख्त रफ्ता रफ्ता खुश्क हो जाते हैं। दरख्तों की जड़ें क्योंकि पानी जज्ब कर लेती हैं, इसलिए ज़मीन पर दलदल नहीं बनती। फिज़ा जब दरख्तों की सांस से भर जाती है तो बादल वज़नी होकर बरसने लगते हैं। हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया ने फरमाया, रेगिस्तान में अगर बेशुमार बांस खड़े कर दिए जाएं और इन बांसों को मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया जाए तो कानून ये है कि रेगिस्तान में बारिश बरसेगी, और जब तक ये बांस लगे रहेंगे तब तक बारिश बरसती रहेगी, ता आके रेगिस्तान नखलिस्तान और जंगल में तब्दील हो जाए। समंदर की दुनिया पर गौर किया जाए तो वहाँ भी यही निज़ाम अमल कारफरमा है। हर चीज़ दूसरी चीज़ के काम आ रही है। हर चीज़ दूसरी चीज़ की खुराक बन रही है। गैर हकीकी तर्ज गुफ्तगु ये है कि इंसान गंदम खा रहा है, जबकि मुशाहिदात ये हैं कि गंदम खाने वाला इंसान मर जाता है और گندم باقی رہتی ہے۔ حقیقی طرز تکلم یہ ہے کہ گندم انسان کو کھا رہی ہے۔ حیوانات کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر ہے اور نباتات کی زندگی کا انحصار کاربن پر۔ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو حیوانات ہلاک ہو جائیں گے، اور کاربن کا ذخیرہ نہ رہے تو نباتات فنا ہو جائیں گے۔ کائناتی سسٹم نے کاربن کو نباتات کی، آکسیجن کو حیوانات کی غذا بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ حیوانات ایک سال میں 60 کروڑ ٹن کاربن سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں، جس میں 20 کروڑ ٹن خالص کوئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حیوانات ایک سال میں 8 کھرب مکب میٹر آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ایسا منتظم اعلیٰ ہے جس نے عالمین کے لیے ایک مکمل نظام ربوبیت قائم کیا ہے۔ زمین کے اوپر موجود مخلوقات کی یہ بہت مختصر رویداد اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہمارے اندر تفکر پیدا ہو، ہم یہ دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں، اور اس بات پر یقین کریں کہ نظام کائنات میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہر چیز دوسری چیز سے ایک مخفی رشتے سے بندھی ہوئی ہے، اور یہ مخفی رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک فرد بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ جب تک کوئی شے دوسری شے کے کام آ رہی ہے، اس کا وجود ہے، ورنہ پھر وہ شے مٹ جاتی ہے۔ یہ پورا نظام ہے جو پانی کی دنیا میں، فضا میں، خلا میں، آسمانوں میں اور انسانوں میں جاری و ساری ہے۔ قدرت یہ بھی چاہتی ہے کہ زمین کا کوئی خطہ، کوئی حصہ قدرت کے فیض سے محروم نہ رہے۔ قدرت نے اس لیے درختوں کو دور دراز زمین تک پہنچانے کے لیے وسائل بنائے ہیں۔ ہوا نے بیجوں کو اپنے دوش پر بٹھا کر دور دراز مقامات تک پہنچایا۔ نالوں، ندیوں اور دریاؤں نے بیجوں اور جڑوں کو زمین کے ہر خطے تک پہنچایا۔ جب کوئی قوم اس سسٹم سے تجاوز کرتی ہے اور ایثار سے خود کو محروم کر دیتی ہے تو قدرت اس کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تم نے کائناتی سسٹم سے منہ پھیر لیا تو یہ زمین کسی اور کو قبضے میں دے دی جائے گی۔ القرآن۔ جو قوم غیروں کے دسترخوان کے لقموں پر پلتی ہے، محنت اور ایثار سے کام نہیں لیتی، صرف دعاؤں اور وظیفوں میں مصروف رہتی ہے اور عملی اقدام نہیں کرتی، وہ خشک درخت کی طرح ہو جاتی ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، جس پر کوئی پھل نہیں لگتا، وہ صرف جلانے کے کام آتا ہے۔ اس خوبصورت زمین پر صرف وہی قومیں باقی رہتی ہیں جو مظاہر فطرت کے جاری و ساری قانون سے واقف ہوں اور حیرت انگیز تخلیق اور نظام آفرینش کا مطالعہ کرتی ہوں، ظالم اور جاہل نہ ہوں۔ سب سے بڑا ظلم اور جہالت یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ آسمانی دنیا کا مشاہدہ کیے بغیر کوئی قوم کائناتی سسٹم سے واقف نہیں ہوتی، اور اپنی ذات کا عرفان نہ ہو تو انسان اور حیوان ایک گروہ کے دو افراد ہیں۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کے خزانوں کو استعمال کیے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ زمین کے خزانوں کے استعمال کا عمل اور طریقہ قرآن میں تفکر اور زندگی میں ایثار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یقین و ایثار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل عقائد کی تکذیب کی، کائنات میں تفکر اور اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی امت کے لیے منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے بنانے والا ہوں انسان کے لیے امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پوچھا تو فرمایا، تیری اولاد میں سے ظالم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ القرآن، سورہ بقرہ۔